ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரம் பிரேமாஸ்பத் பரமாத்ம ஸ்வரூப் சுதாபந்து அக்ஷர தத்துவ சே உற்பன்ன சிருஷ்டி கா க்யா மத்லப் ஹை? माने ईश्वर अक्षर जो है वो तीन अर्थों में आता है. अक्षर माने ये काका गंगा चाचा जया टाणा चाचा और पापा मां, ये भी अक्षर है. तो जैसी आकृति गुरु परंपरा से बनाई गई वैसी आकृति आ रही है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. गुरु परंपरा से आ जैसा बनाया जाता वैसे ही बनाया जा रहा है, का जैसे बनाया जाता वैसे ही बनाया जा रहा है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है. अश्नोति व्याप्नोति, व्याप्त है सब में, अक्षर है तत्व व्याप्त है. और अक्षर में ब्रह्म भी है. अक्षर माने न क्षरती थी अक्षरा, जो क्षरण नहीं होता है जो का क्यों रहता है. तो अक्षर ब्रह्म का मतलब यह है, सृष्टि अक्षर से जरूर बनी, लेकिन इस मतलब उसका ये निकला कि एक ने बनाई है. एक ने बनाई है तो सबके प्रति वही व्यवहार होना चाहिए जो हमारे प्रति हो रहा है, सबसे प्रेम से, सबसे प्यार से, सबसे सौहार्द से मिलना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए. क्यों? हम सब एक हैं. कछुआ और मछुआ ये भी भगवान के रूप हैं. क्यों? भगवान को जब आवश्यकता आती है तब पैसा बन जाते हैं. अभी आए ही जो कछुआ बन गए, मछुआ बन गए, मछली बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए, जैसी आवश्यकता होती है वैसे शरीर धारण करते हैं. बरा भी बन जाते हैं, सुअर भी बन जाते हैं. शुकर का रूप सुना है आपने? तो भगवान का ये मतलब है कि जब एक ही ने बनाई है सब सृष्टि, तो प्रेम से सद्भाव से रहना चाहिए, एक बात. और वही व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए जो अपने को अच्छा लगता है. अपने को अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के प्रति करें. और अक्षर तत्व का ये मतलब है कि जैसे मिट्टी में घड़ा बना, तो घड़ा ही मिट्टी है. आदौ यच्चादौ यच्चान्ते मध्ये विसर्गभवति, आज में और अंत में जो होता है वही मध्य में भी होता है, और जो अंत में नहीं है, आज में नहीं, वो नहीं है. तो घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाता है, अंत में स्वर्ण अंगूठी बनी, स्वर्ण में अंगूठी मिल जाती है. इसका मतलब है आदि अंत में मध्य भी सद्भवती, मध्य में भी वही है. ये मतलब है इसका अक्षर तत्व का. और अक्षर तत्व का ये भी है अर्थ कि ये अविनाशी है. ये जगत, जगत को मिथ्या बताया गया है, लेकिन बदलाहट है, परमात्मा ही है इस रूप में. अविकृत परिणामवाद भगवान ने माना है, द्वैतवाद में जो द्वैत लोग हैं माने द्वैतवादी बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य, इन्होंने अविकृत परिणामवाद, दूध से दही जैसे बनता है लेकिन विकारी नहीं है, विकार से रहित है, अविकृत परिणामवाद. और अविकृत माने विकार न होए, अविकृत परिणाम परिणाम हो जाए, दूध से दही बन जाए, विकार न होए. तो भगवान नाम रूप में बना तो गए, नाम रूप व्याकरवाणी, बनाए तो गए लेकिन विकार नहीं हुआ। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर के तमाम आपत्तियां भी सही, छठवें दिन पूछना आ गई, कहीं शकटासुर, कहीं बकासुर, कहीं कुछ ये आते रहे, तो कोई बात नहीं, उनको मारते भी रहे, उद्धार भी करते रहे, लेकिन मारने का जो पाप पुण्य पाए वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। दृश्य बने ही नहीं, दृष्टा बने रहे। क्यों? उनको मालूम था कि इनको उद्धार करना है। उद्धार जब करना है तो दृश्य भी वही है और वही वो भी नरसिंह भी वही, प्रहलाद भी वही और हिरण्यकश्यप भी वही, तो जो वही वही है तो फिर मारने में क्या दोष? ये भगवान सोचते रहे कि जब हम ही हैं सब रूप में तब मारने में क्या दोष है भाई, अगर हम न होते तो तुम्हारे में दोष था। इसलिए मरने मारने वाला कोई दूसरा है, मैं नियता पूर्व में हो, ये तो अर्जुन को पहले ही बता दिया, मैंने पहले मार दिए हैं, मरे मराए हैं। जिस समय द्रौपदी के वस्त्र धारण हुआ उस समय सब मर गए थे, वो तो खोखला दिखाई देता था। तो जो होता है सो भगवान की इच्छा से ही होता है। जैसे मान लो आपका कोई लड़का है या स्वजन संबंधी है, कोई चला जाता है तो मुक्त हो गया, अच्छी वही बात, उसके लिए दुख नहीं मानना चाहिए। संयोग के बाद वियोग होता ही है, संयोग सुख हमेशा नहीं मिलता है, सम्मान मिलता नहीं है हमेशा। जो सुविधा सम्मान चाहते हैं वो ये मान लें कि सुख हमेशा नहीं है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय, लाभ अलाभ, लाभ या हानि या सुख दुख सम समझना चाहिए। सुख में बहुत फूल न जाए और दुख में बहुत दुखी न हो जाए, सुख दुख को समान देख कर, लाभ हानि को समान देख करके और जय और पराजय को समान देख करके रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दोष है। अगर समत्वम योग उच्चते नहीं मानोगे अर्थात समता नहीं रखोगे सुख दुख में, हानि लाभ में, तो आप दुखी होंगे। आपको तो मालूम ही है संयोग सुख होता है, संयोग सुख परिवर्तित होता रहता है, कभी संयोग कभी वियोग आया। उसी चीज का होता है जो चीज आपको बहुत प्रिय लगती है। ऐसा कौन है जिसमें संयोग ही रहा है? ऐसा तो परमात्मा ही है, वो परमात्मा का कभी वियोग नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा रूप में है, आत्मा अहम रूप में है, तो अहम का कभी लोप नहीं होता। ऐसे संयोग परमात्मा का वियोग कभी नहीं होता, तो उस परमात्मा को मानना चाहिए नारायण, जिसको कभी वियोग न हो, वियोग नहीं होता है। दुनिया में संयोग वियोग है, लाभ और हानि है, उसके भजन में कोई हानि नहीं, उसके भजन में क्या हानि, न कुछ खर्चा, न कुछ, न कोई उपाय ढूंढना है, अपना बैठ के जप करने लगे सबसे सरल। तो अक्षर तत्व का यही मतलब है, अक्षर तत्व से सृष्टि हुई कि सब लोग एक ने सृष्टि करी, सब लोग प्रेम से रहें, व्यवहार दूसरों से करें जो अपने को पसंद हो, यही अक्षर तत्व का मतलब है। और दूसरी बात एक ये है कि ये भी समझते रहना चाहिए हमेशा कि जीवन दो घड़ी का है। अक्षर तत्व से भी मतलब हुआ दो घड़ी का जीवन है, तो जीवन में जो यह भी सत्यम अस्ति, जो यहां प्राप्त किया वही सत्य है, और महति विनष्टी, अगर न प्राप्त किया उसको जीवन में तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। कहते लोग क्या हानि, आज नहीं भजन कर ले, कल कल कर लेंगे, नहीं नहीं बहुत हानि हो जाएगी, महति विनष्टी, बहुत नाश हो जाएगा। आज अगर आप आलस कर गए तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा, ये पता ही नहीं है। ये अगर पता हो कि बहुत विनाश हो जाएगा तो फिर भजन करना है, क्योंकि जैसे जल में मछली सुखी होती है ऐसे भजन से व्यक्ति सुखी होता है। ये देखना चाहिए कि भजन वो करते हैं वो देव कितने सुखी हैं, ऐसे समझ लो, भीतर से संतोष है, क्षमा है, गुण है, सद्गुण है, और जिन लोग भजन नहीं करते उनमें दोष ही दोष भरे हैं, तो ये समझना चाहिए। और ये जो नहीं समझते हैं उन्हीं का हानि होती है, उन्हीं को हानि होती है, उन्हीं को विनाश होता है। महति विनष्टि का अर्थ है बहुत बड़ा विनाश, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। अगर सत्य को न पहचाना तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी, बोले जीवन का पता है कि अगले जन्म मनुष्य ही मिलेगा, का पता, शायद बैल बन गए, एक गाय बन गए। हमारे स्वामी जी हमेशा कहते थे कि मान लो गाय बन गए बैल बन गए तो थोड़ी भजन कर पाओगे, मनुष्य के जीवन में भजन है, मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा है, तो इसलिए चाहिए हमेशा कि मौज में रहें। अब आगे स्वामी जी बोलेंगे।
कल आप श्रवण कर रहे थे यज्ञ के संबंध में, यज्ञ तब व्यक्ति को सुखकारी होता है, उसके अभीष्ट को यज्ञ तब देता है जब समझ के साथ यज्ञ हो और यज्ञ पूर्ण हो गया हो। यज्ञ अपनी पूर्णता में ही फल की सृष्टि करता है, फल को देता है। अज्ञान से युक्त या अधूरा यज्ञ फल नहीं देता है। तो अग्निहोत्र एक यज्ञ है, उसमें दर्श है, पौर्णमास है, चातुर्मास है, और अज्ञायन है, अतिथि भोजन है, बलि वैश्य है, विश्वदेव आदि, इनका सब है यज्ञ के समय में विधिवत अंग के रूप में सबका अनुष्ठान करना पड़ता है। और यदि इसमें कोई गलती हो गई तो बोलते हैं कि उसके सात जन्म के जो शुभ लोक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आप यही देख लीजिए, यदि कोई किसी पिता का पुत्र नशा करता हो और संपत्ति पिता की नष्ट कर दे तो तीन पीढ़ी को कष्ट उत्पन्न हुआ कि नहीं, लोक में देख लीजिए। पिता की अथक प्रयत्न से कमाई हुई संपत्ति को नशा में खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो पिता को तकलीफ हुई। और बेटे का जो बेटा है, पोता है, उसको भी विकास के लिए कोई और वस्तु ना रही, साधन न रही। तो इस प्रकार से जैसे यहां आप लोक में देखते हैं, इसी प्रकार से परलोक में भी होता है। इसलिए यहां ज्ञान युक्त कर्म की निंदा की गई है, समझ से एक करना चाहिए, समझदारी से। समझदारी क्या है इसमें? आप तो ये सोचेंगे कि यदि यज्ञ सर्वांग समझदारी से हुआ तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ये समझदारी नहीं है। सर्वांग यज्ञ हो गए और साथ साथ है यज्ञ के कर्म के फल की स्पृहा न हो गए, यही समझदारी है। क्यों नहीं हो गए वो आपको आगे बताया जाएगा। कि संस्कार के लिए आपको संक्षेप में बता दूं कि जैसे यहां प्रत्न से प्राप्त वस्तु विनष्ट होती है, इसी प्रकार से अपने प्रत्न पुरुषार्थ से प्राप्त स्वर्ग भी विनष्ट हो जाएगा। इस प्रत्न से तो आपको नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वरूप परमानंद अनंत द्वय कूटस्थ अविचाली अनुपाय उपजन विकार रहित निखिल सामृत प्राण पर प्रेम अस्पत परात्पर परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। चित्त की शुद्धि हो सिर्फ इसके लिए धर्म कर्म करना चाहिए। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाएगा, चाहे आप एक क्षण ही करें, वो आपके अनंत मंगल का हेतु इसलिए होगा कि जब यहां प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के फल निश्चित हैं, तो जब परमात्मा प्राप्ति संबंधी कर्म होगा तो परमात्मा को बिना दिए कैसे नष्ट हो जाएगा। जब यहां आप पाप के फल का वर्णन है कि नरक की प्राप्ति होती है और पुण्य के पुण्य कर्म के फल का वर्णन है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवत संबंधी यदि कर्म किया जाएगा तो उसका क्या फल होगा? चाहे वो एक सेकेंड आपने किया हो, ये शास्त्र का विधान भगवत विधान है, नारायण भगवान की ही वाणी है, अपौर शेबेर का ही ये सिद्धांत है। तो आप एक सेकेंड यदि शुभ कर्म किए हो परमात्मा की सिर्फ प्रसन्नता के लिए प्राप्ति के लिए, तो उसका फल क्या होगा? आप वस्तु नहीं चाहते हैं, तो यही समझ पूर्वक कर्म हुआ। अब आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए, निर्धूम हो गए, लपटें उठ रही हों, तब यज्ञ में आहुति देनी चाहिए। उसकी साथ जीवाओं का भी अग्नि के वर्णन है। इसके बाद है, यदि कहीं सर्वांग किसी का यज्ञ पूर्ण हो गया, उसकी कामना है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, तो वहां आपकी ये आहुति ही सूर्य की किरण बन करके स्वर्ग में ले जाती है और फिर स्वर्ग में वहां आपका बड़ा स्वागत सत्कार होता है। यही तमाहुतया वही आहुति आपकी स्वर्ग में आपकी देवांगनाएं या आपकी सुविधा की सामग्री बनकर के आपका वहां आदर होता है। और प्रिय वाणी महाराज बोलते हैं, एष वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोक है, आपके सुकृत का फल है, इस प्रकार कहा जाता है। यहां इसके संबंध में कल ये बताया गया था कि प्लवा ही एति दृढ़ा यज्ञ रूपा, ये जो यज्ञ रूप है, ये जो लोक है, स्वर्ग लोक है, ये अत्यंत तुच्छ है और क्षणिक है। इसमें बोलते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अष्टादशोक्त मवरम एषु कर्म, मवरम माने अवरम माने श्रेष्ठ। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सिर्फ जो कर्म किया जाता है वो अवरम अबर है, दूरेण ही बरम कर्मा बुद्धि होगा धनंजय। अकल से रहित जो किया जाता है कर्म, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि वो अबर है माने निकृष्ट है, श्रेष्ठ नहीं है। तो फल क्या होगा? इतने बड़े प्रयत्न से, परिश्रम से, इतने सहयोगियों से, इतने संभार से किया हो गया यज्ञ, दीर्घ काल तक हमने श्रम किया, उसका फल क्या होगा? बोले जन्म मृत्यु ते पुनरे हुआ भी यान थी, फिर वही जन्म मृत्यु छीने पुण्य मर्तलो की विसंति, पुण्य के छीन हो जाने पर फिर व्यक्ति को ही मौत, फिर वही व्यक्ति का जन्म, फिर वही व्यक्ति की जरा, फिर वही व्यक्ति का रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये जो हमारा मन है, मन यदि हमारे मन के साथ समझ न हो, विवेक न हो, तो मन कभी भी आपको आपकी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है। कभी अभीष्ट वस्तु की ओर ये झुक नहीं सकता है, मुड़ नहीं सकता है। देखो, मन का एक स्वभाव होता है। मन का पहले स्वभाव समझ लीजिए। मन का स्वभाव है, मन की प्रकृति है संशय, विकल्प जी। मन का स्वभाव है ये तमाम प्रकार के संशय है, विकल्प है, संकल्प है। इसके कोई 20 स्वरूप बताए हैं। स्वभाव है इसका संकल्प विकल्प करना, इसका स्वभाव नहीं है परमात्मा की ओर जाना। इसका स्वभाव है गड्ढे की ओर जाना। आप एक उदाहरण से समझिए। एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा होता है, 3 वर्ष का है 4 वर्ष का है। बच्चे का स्वभाव क्या होता है? बच्चे का स्वभाव होता है चंचल। अब बच्चे का स्वभाव होता है कि विकास में न लगना। एक माँ है, वो उसको बोलती है कि तू बैठ करके यहां इतने पेज तुमको लिखने हैं, लिख लो। बैठा दिया है, डांट करके, दपट करके, धमका करके बैठा दिया है। माँ इधर चली गई है, पुस्तक को रख दिया है, लेखनी को रख दिया है, सोफा सेठ में उछल रहा है, कूद रहा है, कभी घिसट रहा है, वो कभी झूल रहा है, कभी कूद रहा है। ये तो स्वभाव है उसका। बंबई के बच्चों को हम नहीं जानते हो, पढ़ते हो तो भगवान जाने, पर बाहर के बच्चों को, माताओं को पहले बैठाना पड़ता है, क्योंकि उसका सहज स्वभाव है चंचलता। उस चंचलता के साथ भी समझ नहीं है, उसमें भी विकास नहीं हुआ है बुद्धि का, समझ का, कि मेरा हित किस में है, ये बात अभी बच्चे को मन में नहीं है। इसीलिए वो श्रेय के कार्य में उसको नहीं लगाया जा सकता है। माता बैठेगी तो लगेगा, वो माता गई तो बच्चा भी गया। बच्चे का स्वभाव चंचल है। बच्चे से भी कहीं अनंत गुणा मन का स्वभाव चंचल है। भगवान श्री कृष्ण से गीता में अर्जुन ने क्या पूछा? चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथ बलवद्ध। ये भी एक स्वभाव उसका, जैसे संशय है, विकल्प है, संकल्प है जी, स्मृति है, ये सब स्वभाव है इसका। चंचलता भी इसका स्वभाव है। अब ये चंचल है, इसको आप सत्कर्म में कैसे लगाएंगे? जैसे माँ जबरदस्ती बच्चे को बैठाती है, लिखाती है, थोड़ी थोड़ी जब वो बैठने सीख लेता है, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी भर ही बच्चा बना रहे, जिंदगी भर उछलता रहे, पर आरंभ में उसको संस्कार बच्चे को देने पड़ते हैं। धीरे से जब वो बड़ा हो जाता है तो दोनों चीजें घट जाती हैं, उसकी नासमझी घट जाती है, उसकी चंचलता भी घट जाती है। वो समझने लगता है कि अब हम, मेरा तो पढ़ने में ही हित है। तो जब ये समझ लेगा कि चंचल नारायण मेरा पढ़ने में ही हित है, तो वो फिर श्रेय के काम में, अपने हित के काम में, अपने विकास के काम में लगने लगेगा। पर पहले उसको संस्कार देना पड़ेगा, पहले उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का सहज स्वभाव है चंचलता, बच्चे का सहज स्वभाव है ना समझिए, अभी समझ का विकास नहीं हुआ। इसी प्रकार बच्चे की तरह ये चंचल है, इसकी समझ का भी विकास नहीं हुआ है मन की। अभी अपने हित की बात नहीं समझता है, इसलिए यहां पहले वेद भगवान इसकी चंचलता की निवृत्ति के लिए पहले ये इसे कर्म में लगाता है, और धीरे धीरे जब कर्म में धर्म में लगने का जो स्वभाव शील बन जाएगा तो स्वतः इसके अंदर एक समझ का विकास होगा मन के अंदर कि मेरा हित इसी में है, तो बच्चे की तरह फिर हित के काम में लग जाएगा वो। एक और इसका स्वभाव है, ये इसलिए बता रहा हूं कि इसको इसके स्वभाव पर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ये मांग है, आज के आचार कहते हैं कि ये मन की मांग है, इसे दबाओगे तो कहते हैं ठीक नहीं रहेगा, इसको रोको नहीं कहते हैं कि जो मनाए सो करने दो। एक बार मैं नडियाद गया था, नडियाद में एक सत्संग हो रहा था, उसमें हम शामिल हुए थे नडियाद में। दो चार मिनट हम बैठ करके देखा, वो बोल रहे थे कि जो इसके मन में आए सो इसे करने दो, रोकोगे तो और ही उछलेगा। ऐसे भी है पर ऐसा नहीं है, यदि ऐसा होता तो फिर ये इसके प्रकृति को स्वभाव को नहीं समझा है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। पानी का स्वभाव है गड्ढे, जितने भी गड्ढे होंगे गड्ढा ही ढूंढता रहेगा वो, उस गड्ढे में न जाए उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस गड्ढे में मिट्टी भर दो या जल को रोक दो। या यूं कह रहा हूं कि जैसे जल को यंत्र के द्वारा चढ़ाया जा सकता है, चढ़ता है वो, इसी प्रकार से आपका मन भी गड्ढा ढूंढता है, इसका स्वभाव है गड्ढा ढूंढना। अरे अभी कल आपको बताया था कि यदि मोटर का नियंत्रण ना किया जाए तो मोटर तो आपको सही लक्ष्य पर नहीं पहुंचाएगी, तो इसका नियंत्रण मन का यदि ना किया जाए, इसके नियंत्रण का उपाय यही है कि ये कहीं शुभ कर्म में लगा दिया जाए। पहले नहीं लगेगा, आप सत्संग में बैठे हैं और आपको यहां कुर्सी में छोड़ दिया है, आपका मन चला गया, पता ही नहीं चलेगा। बच्चे को तो थोड़ी देर पता भी चल जाता है कि वो है ही नहीं पुस्तक के पास में, पर मन का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मन अरूप है, उसका तो पता ही कैसे चलेगा, देखोगे कैसे उसे।